उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, प्रभु की अहित की कृपा से मानव जीवन मिला और उन्हीं का दिया हुआ यह अवसर है कि हम सब लोगों को जीवन के सत्य पर विचार करने का अवसर मिला। इस समारोह की यह आखिरी बैठक है। तो समारोह की आखिरी बैठक है, परंतु हमारे जीवन में सत्संग की जो अखंडता है, सब समय हम लोगों को सत्संग के प्रकाश में ही चलना चाहिए। कब तक? जब तक कि यह जीवन पूर्ण न हो जाए। तो इस दृष्टि से एक सप्ताह के भीतर जो भी कुछ जीवन का सत्य हम लोगों के सामने आया, जिस पर हम लोगों ने विचार किया, उसमें से कुछ खास चुनी हुई बातों को फिर से दोहरा लेना चाहिए, इसलिए कि उन पर हम संपूर्ण जीवन में प्रयोग करते रहें। तो संघ के प्रणेता संत ने एक बहुत क्रांतिकारी बात हम लोगों के सामने यह रखी कि जीवन के पूर्ण विकास के लिए श्रम की ओर से विश्राम की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसार में शरीरों का निर्वाह करने के लिए अनेक प्रकार के श्रम हम कर रहे थे, अब शरीरों से अतीत अविनाशी जीवन से मिलने के लिए भी कुछ कुछ श्रम करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। क्या करें क्या करें क्या करें, तो महाराज जी कहते हैं कि भाई श्रम तुम्हारे पास है, श्रम करने की सामर्थ्य है, तो सेवा करो, खर्च करो उसे, अन्यथा जो तुम्हें शांति संपादन का समय मिले तो श्रम रहित होकर अविनाशी जीवन की ओर आगे बढ़ो। तो श्रम होता है शरीरों के लिए, श्रम होता है शरीर और संसार के सहयोग से, श्रम होता है शरीर और संसार को सहयोग देने के लिए, और साधक की दृष्टि में श्रम किस लिए? अब तक जितनी बातें निवेदन किया मैंने वो तो सबके लिए समान रूप से सत्य है, और साधक की दृष्टि किस बात पर रहनी चाहिए कि श्रम करते हैं हम विश्राम पाने के लिए। तो ऐसा श्रम करना चाहिए और इस ढंग से करना चाहिए कि श्रम के अंत में मुझे सहज भाव से बिना किसी विधि विधान के स्वाभाविक रूप में विश्राम मिले। तो एक वाक्य अगर सामने रखा जाए तो क्या कहेंगे हम कि श्रम करना है विश्राम पाने के लिए। एक बात ये विशेष बताई स्वामी जी महाराज ने, दूसरी बात यह बताई कि भौतिक जगत के कल्याण में और व्यक्ति के कल्याण में अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो लोग संसार की सेवा में लग जाते हैं वे आध्यात्मिक विकास से वंचित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, और जो लोग आध्यात्मिक विकास में लग जाते हैं वे संसार के काम नहीं आते, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति और समूह में अविच्छिन्न संबंध बताया महाराज जी ने, इसलिए उन्होंने जगत की सेवा और शांति की अभिव्यक्ति, जगत की सेवा और भगवत भक्ति दोनों को परस्पर विरोधी नहीं बताया, इसलिए कि सेवा करने की सामर्थ्य, सत्य पर विचार करने की सामर्थ्य और सर्वस्व समर्पण करने की सामर्थ्य एक ही व्यक्तित्व में होती है, इसलिए उन्होंने तीनों में योग बताया। कि जो भगवत समर्पित हो करके जीवन पाना पसंद करेगा, अर्थात उस अनंत परमात्मा से सदा सदा के लिए अभिन्न होना पसंद करेगा, उसको त्याग से भी काम लेना पड़ेगा और सेवा से भी काम लेना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर से अभिन्न होने के लिए कोई श्रम अपेक्षित नहीं है, अहम का परिवर्तन अपेक्षित है। अब तक हम जी रहे थे सुख भोग के लिए, अब इसी क्षण से इसी वर्तमान में मैंने निश्चय किया है कि अब हम जिएंगे प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनके प्रेम के लिए। तो एक जीना है सुख भोग के लिए और एक जीना है परमात्मा के प्रेम के लिए। तो यह परिवर्तन कि अब मैंने आज से इसी क्षण से सुख भोग को इनकार किया और परमात्मा के प्रेम के लिए जीना पसंद किया, इसमें कोई श्रम की बात नहीं है। इसको महाराज जी ने स्वधर्म बताया कि अपने द्वारा व्यक्ति यह निश्चय लेता है और उसके निश्चय के साथ ही उसका अहम परिवर्तित हो जाता है और अहम परिवर्तन के साथ ही मन चित्त बुद्धि इंद्रियां सब में अपने आप से परिवर्तन होने लगता है। ये एक खास बात है अहम के परिवर्तन की बात, जिसको स्वामी जी महाराज ने इतना स्पष्ट करके और बिल्कुल एसेंशियल पॉइंट के रूप में कि साधक के लिए ये होना अनिवार्य है। अगर उसने अपने अहम को नहीं बदला, अपने लक्ष्य को नहीं बदला, जीवन के अर्थ को नहीं बदला, तो किसी विधि विधान से भगवत भक्ति उसमें उपजेगी ये संभव नहीं है। तो एक जो प्रचलित कायदा है, जगह जगह मैंने देखा है, किसी किसी बात के लिए तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी देख देख करके, और कभी कभी हंसी भी आती थी, लेकिन मैंने देखा है कि अहम के परिवर्तन के लिए असत्य की अस्वीकृति और सत्य की स्वीकृति को प्रधानता नहीं देने से साधकों में एक बड़ा भारी भ्रम पैदा हो जाता है। और वो क्या होता है कि वे प्रारंभ ही कर लेते हैं नाम जप से, भजन से, कीर्तन से, पाठ से, नित्य नियम से। तो मैंने पुरुषों के बारे में तो उतना नजदीक से हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक जगह पर जहाँ पर बहुत से साधक ही लोग रहते हैं, महिलाओं की मंडली में मैंने देखा था, नई नई उम्र की लड़कियां, 20 वर्ष की, 22 वर्ष की, 25 वर्ष की, 28 वर्ष की बहुत लड़कियां थीं, कम से कम 25 तो होंगी, पूरी गिनती मुझे मालूम नहीं है। तो उन लोगों के साधन का ढंग ऐसा था कि सवेरे से उनका बड़ा कठिन नियम बना हुआ था कि इतने घंटे आपको इस तरह से बिताना है, इतने घंटे इस तरह से बिताना है, इतने घंटे नाम जप करना है। तो भाई अब सबकी रुचि अलग, सबकी शारीरिक दशा अलग, तो 25 में से कुछ लोग तो ऐसी थी कि जिनका सहज से ये सब नित्य नियम पूरा हो जाता था 11-12 बजे तक, और कुछ की शारीरिक दशा अच्छी नहीं रही होगी, तो किसी को आलस आती, जम्हाई आती, किसी के पांव दुखते, किसी की पीठ दुखती, किसी के सिर में दर्द होता, तो उसका पूरा ही नहीं होता। मानसिक दशा भी सबकी अलग अलग, कोई मेंटली कुछ ज्यादा बैलेंस्ड है तो वो नित्य नियम अपना ठीक तरह से पूरा कर लेता है, किसी के मन में बहुत सी अतृप्त इच्छाएं परेशान कर रही हैं तो उसका कंसंट्रेशन होता ही नहीं है, ध्यान लगता ही नहीं है किसी बात में, बड़ी परेशानी से वो पाठ पूरा करे। तो शाम के समय 4 बजे जब आपस में एक दूसरे की बातचीत होती तो सब रिमार्क्स मुझे सुनने को मिलते, एक दूसरे से कंपटीशन हो जाता, एक दूसरे के प्रति ऊंचा नीचा भाव हो जाता, तो जिनसे सहज से हो जाता वो लोग समझते कि हम अच्छे साधक हैं, जिनको कठिनाई होती उनको एक हीन भावना आती। तो इन्फीरियोरिटी सुपीरियोरिटी कंपटीशन, और उसमें भी अच्छा बन गया साधन तो उसका अभिमान नहीं बन रहा है, तो एक अजीब तरह की क्षोभ की दशा तो देख देख करके मेरे भीतर इतना दुख होता। मैं सोचती कि देखो आदमी चला है साधन करने भगवान के नाम पर, तो वहां भी कितना असाधन का सृजन हो रहा है। तो जिन लड़कियों से होता नहीं था उनके प्रति मेरी बहुत सहानुभूति भी रहती थी। अब क्या करें, हेल्थ अच्छा नहीं है, बैठा नहीं जाता है, पीठ दुख गई, घुटने दुख गए, मन में अनेक प्रकार की अशांति है, कितनी दमित इच्छाएं, विविध परिस्थितियां होती हैं। तो जो लोग इतने समर्थ होते हैं कि सत्य के प्रकाश में इच्छाओं की आपूर्ति को गिनते ही नहीं है, कि है तो है, हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई, हटाओ सबको, तो इतने जो भीतर से सामर्थ्यवान हैं, जिनका चित्त अपेक्षाकृत शुद्ध है, जिनके भीतर की वासनाएं उतनी प्रबल नहीं है, तो उनके लिए सहज हो जाता है प्रतिकूलता के साथ एडजस्ट करना। और जिनके भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है, अथवा जिनको बहुत अनुकूलता मिली है कि मन में जो आया सो बात पूरी हो गई, माता पिता ने कर दिया कि सास ससुर ने कर दिया कि पति पुत्र ने कर दिया कि पत्नी माता बहन ने कर दिया, तो ये भी मनुष्य की साधना में एक बड़ी बाधा हो जाती है कि उसको परिवार और कुटुंबी बहुत अनुकूल मिल जाए और हर इच्छा उसकी पूर्ति करने में लोग प्रेम से स्नेह से सहज से कर दें। तो ऐसी ऐसी किसी की आदत बन गई है, अब उसके सामने प्रतिकूलता आ जाए तो इच्छाओं के साथ अपने को अभियोजित करने की सामर्थ्य उनमें नहीं होती। और स्वामी जी महाराज ने तो आधुनिक मनोविज्ञान में बहुत आगे आने वाली बात को बहुत पहले कह दिया था। आधुनिक मनोविज्ञान वाले लोग अब समझ रहे हैं कि इच्छाओं की आपूर्ति से मनुष्य के मस्तिष्क की ताकत जैसे घट जाती है, ऐसे इच्छाओं की बहुत बार पूर्ति होने से भी ताकत घट जाती है। तो ये बात मनोविज्ञान वेत्ता अब कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा। तो चाहे आपूर्ति के कारण क्षोभ है, चाहे बहुत अधिक पूर्ति के कारण से मानसिक दुर्बलता आ गई है, तो जिसके जिसके मन में बहुत सी इच्छाओं ने होड़ जमा रखा है और जो असंतुष्ट है भीतर से, उसका भी साधना में मन नहीं लगता, किसी बात में मन नहीं लगता, कोई भी काम उसको दे दो तो वो जम करके बिल्कुल तन मन लगा के उसी काम के साथ रम जाए, ऐसा बहुत कम लोग कर सकते हैं। समझदारी से अपने को दबा करके संभाल लेना, अपने पर जोर डाल करके काम पूरा कर लेना, ये बात अलग है। और कुछ काम करने वाले ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल तन मन सब लगा करके उसी काम में रम जाते हैं, तो जिनकी मानसिक दशा संतुलित होती है, स्वाभाविक होती है, स्वस्थ होती है, वे तो ऐसा कर सकते हैं। और जिनके मस्तिष्क में भीतर भीतर अधिक असंतोष है, टेंशन है, तो उनसे नहीं होता है। तो अलग अलग शारीरिक दशाएं हैं, अलग अलग मानसिक दशाएं हैं, और सब लोग एक समान ध्यान भी नहीं लगा सकते, जप भी नहीं कर सकते, मामूली काम नहीं कर सकते, तो ये सब कैसे हो। तो बड़ा भीतर भीतर उन लोगों के यहाँ हलचल हलचल मची जाती थी, और एक को देख करके दूसरा एक प्रकार का रिमार्क पास कर रहा है, दूसरे को देख करके दूसरा कुछ और कह रहा है, अरे भाई इनकी तो क्या बात है, इनकी तो बन गई। कोई कह रहा है कि अरे भाई यहाँ भी आए तो क्या क्या करते रहते हैं, साधना करते नहीं है। तो केवल एक दूसरे पर दीनता और अभिमान के प्रभाव से प्रेरित हो करके अजीब अजीब तरह का व्यवहार करना देख करके मुझे बड़ा दुख होता था। स्वामी जी महाराज के पास आई ही थी मैं, देखती रहती थी सब। मानव सेवा संघ की पद्धति में स्वामी जी महाराज ने सत्संग से पहले साधन का कोई क्रम किसी को पकड़ाया नहीं, कभी नहीं। पहले सत्संग करो, सत्य के प्रकाश में जीवन को पहले अच्छी तरह से समझो, उसकी व्याख्या करो, उसका निरीक्षण करो, अपने जाने हुए असत्य के त्याग की बात करो, जीवन के सत्य को स्वीकार करने की बात करो, तो अधिक से अधिक महाराज जी ने हम लोगों की शक्ति और समय सत्संग में लगाया। बिना सत्संग के, बिना स्वीकृति को बदले किसी प्रकार की साधन पद्धति को पकड़ाया नहीं कि गुरु ने कह दिया है कि ऐसा करना, अब न करते बने न छोड़ते बने। बहुत लोग असमंजस में पड़ जाते हैं, करना चाहते हैं तो होता भी नहीं है, और गुरु ने कह दिया है कि ऐसा करो तो छोड़ते भी नहीं बनता है, डर लगता है कि छोड़ कैसे दें, फिर क्या करेंगे। तो मानव सेवा संघ में साधकों को इस प्रकार के द्वंद में कभी नहीं डाला। आप लोग इतने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जिन लोगों को इस पद्धति का परिचय है, कोई नहीं कह सकता है कि स्वामी जी ने सत्संग कराया हो पीछे और साधना पकड़ा दी हो कि जाओ बेटा बैठ करके ऐसा ऐसा करो। कभी नहीं किया, करने को नहीं कहा। तो एक यह विशेषता है, इस पर जहां तक दृष्टि जाए अपनी, हम लोगों को इस संबंध में अपना दृष्टिकोण भी बहुत स्पष्ट रखना चाहिए और दूसरे साधकों के दृष्टिकोण को भी इतना स्पष्ट रहने देना चाहिए। अच्छा, उपवास करते नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, अब कोई निर्जला एकादशी कर ले और कोई न कर सके तो भाई जल पी के रह जाए, कोई उतने से भी ना बने तो दूध पी के रह जाए, किसी से उतने भी ना बने तो फलाहार भी कर लो। तो इन बातों में मानव सेवा संघ कभी किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत साधना को कुछ नहीं करता है। भाई शारीरिक दशा है, शरीर धर्म है, जितनी तुम्हारी ताकत है, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसे करो। कभी कभी देखा गया है कि बहुत कमजोर और दुर्बल साधक भी संकल्प के बल पर बड़ा कठिन कठिन तप कर लेते हैं, ऐसा भी देखा है। अभी मैं अगस्त सितंबर महीने में राजस्थान में थी, जोधपुर में काफी थी, तो उन दिनों में जैन मत के हिसाब से कुछ विशेष दिन चल रहे थे, कुछ उनके त्याग तप का। तो किसी ने 6 दिन तक बिल्कुल निर्जल व्रत किया और किसी ने 21 दिन तक किया, किसी ने 1.25 महीने तक किया, किसी ने 3 महीने तक किया, एकदम निर्जल व्रत, जल भी नहीं पीते हैं। और घरवारी महिलाएं, तो जिस घर में मैं ठहरी थी उस घर में जो बहू थी वो हर दूसरे तीसरे दिन शाम के समय बाहर निकलने को तैयार है, माता जी आज उसके यहाँ जाना है, जा रहे हैं, क्या बात है भाई। तो उसने 21 दिन का वो व्रत लिया है। तो आप जाकर क्या करेंगे, तो आसपास के सब जान पहचान के लोग आते हैं, उसके पास बैठ करके भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि इसने इतना कठिन व्रत किया है, इतना कठिन तप किया है। तो ऐसे ऐसा भी चलता है, तो उसको मैं क्या कहूँ। तो शारीरिक बल पर भी काम होता है, संकल्प के बल पर भी काम होता है, लेकिन सबसे एक समान नहीं हो सकता। बहुत दिनों के बाद एक महिला उसी घर में आई तो वो बहू हमको आके कहने लगी कि माता जी यही हैं जिनके घर में जाया करती थी मिलने के लिए, तो इन्होंने कितना 1.5 महीने का कि 3 महीने का कितना किया, 3 महीने का, 3 महीने से कुछ कम किया था। तो आई और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद एकदम पसीने से परेशान हो गई, फिर जमीन पर लेट गई। हमने कहा कि क्या हो गया भाई, इनकी तबीयत खराब है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने उस समय व्रत जो किया था उसकी कमजोरी अभी गई नहीं है, और अब घर में सेवा करने के लिए कोई है नहीं, सब लोग अपना अपना चले गए, तो बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, इनकी दुर्बलता लगती है, परेशान रहते हैं, ये सब भी मैंने देखा है। मानव सेवा संघ ने इस प्रकार की साधना का प्रतिपादन नहीं किया, कंपल्सरी नहीं बताया कि आपको करना चाहिए। शरीर धर्म है, शरीर के साथ निभेगा, और स्व धर्म है तो स्व के साथ निभेगा। तो स्व धर्म पर अमित महाराज ने ज्यादा जोर डाला, प्राप्त सामर्थ्य को दुर्बलों की सेवा में लगाना, ये शरीर धर्म की बात हो गई। शरीर से शरीरों की सेवा बनेगी। जो कुछ मिला हुआ है उसमें मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, तो निर्मम होना ये स्वधर्म की बात हो गई। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे जीवन को पूर्ण बना सके, दुख रहित जीवन की, चिर शांति, जीवन मुक्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति करा सके, ऐसा इस जगत में कुछ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अचाह होना उन्होंने स्वधर्म बताया। और सर्वसमर्थ प्रभु हम सभी के अपने हैं, अभी हैं, अपने में हैं, अतः उन्हीं के होकर रहना मुझे पसंद आया। तो प्रभु की शरणागति, प्रभु का आश्रय, हरि आश्रित होकर रहना, इसको स्वधर्म बताया। तो ज्यादा से ज्यादा जोर इस बात पर है कि हम लोग स्वधर्म और शरीर धर्म का पालन स्वेच्छा से करने के लिए तैयार हो जाए, इस पर ज्यादा जोर है। ऐसा नहीं है कि शरीर चलता भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है, उसमें बर्दाश्त करने की ताकत भी नहीं है, और तो भी एक साधना ऐसी जबरदस्त आपके सिर पर बैठ गई कि मरे भी जाओ और किए भी जाओ और होता भी नहीं और परेशान भी रहो, तो ऐसी बात मानव प्रदर्शन में नहीं कही गई। आज एक सज्जन हमारे पास आए, विवाह शादी की बात चली, निमंत्रण की बात चली, तो उनके संबंधी को मैंने कहा कि अगर आप अपने संबंधी का हित चाहते हैं तो उनको ये सलाह दीजिए कि आश्रम वास का पूरा लाभ उठाएं, अर्थात विवाह संबंधी कार्यों में भाग लेना अनिवार्य न माने। मानव सेवा संघ केवल साधकों को सलाह देता है कि अगर आप सीमित मोह के संबंधों को तोड़कर परमात्मा के नाते असीम संबंध में, असीम परिवार में शामिल होकर के हृदय को विस्तृत करना चाहते हैं, लोभ मोह से मुक्त होना चाहते हैं, दीनता और अभिमान से मुक्त होना चाहते हैं, अपने पराये का भेद मिटाना चाहते हैं, तो ऐसा करिए। हम लोगों को सिखाया गया कि भाई अगर तुम मुक्ति का व्रत लेना चाहते हो तो बंधन का उत्सव देखना बंद कर दो। ललित भाई समझ में आ गया? अगर मुक्ति का व्रत लेना पसंद किया तुमने, पसंद तो करना चाहिए था बहुत जल्दी, अफसोस की बात है कि 60 वर्ष के ऊपर ही आ गए, अब क्या करें। तो अब भी सही, 60 वर्ष की उम्र के बाद ही सही, अगर मुक्ति का व्रत लेना है आपको तो बंधन के व्यवहारों को देखना, उसमें शामिल होना छोड़ दो। जरूरी है कि नहीं है? है जरूरी। तो मानव सेवा संघ अपने साधकों को ये नहीं कहता कि आपको विवाह शादी में भाग लेने के लिए हम नहीं जाने देंगे। स्वामी जी महाराज ने इसको तो बहुत घटिया किस्म का साधन माना कि किसी के कहने से आप रुक जाएं, बहुत घटिया किस्म का साधन है। अगर हम ऊपर से दबाव डालें कि आश्रमवासी लोगों को, साधकों को जो मुक्ति के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, उनको गठबंधन देखने के लिए नहीं जाना चाहिए, तो मैं कह दूं कि नहीं जाना चाहिए तो कई साधक हैं जो रुक जाएंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन स्वामी जी ने ऐसा पसंद नहीं किया कि नहीं भाई मेरे कहने से नहीं, तुम्हारे भीतर में इच्छा रह गई तो हमारे कहने से रुक भी जाओगे तब भी तुम्हारा उतना विकास नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो बात क्या है? तो बात ये है कि जो जीवन का सत्य है, जो आपके विकास के लिए आवश्यक है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। आपका विकास कब होगा? जब स्वेच्छा से आप इस बात को पसंद करें कि हाँ ये मेरे लिए हितकारी बात है, इसको मुझे मानना चाहिए, तो जब आप उसको मानना पसंद करेंगे तब वो आपके लिए हितकारी होगा। तो सच्ची बात जो है आपके लिए जो हितकारी बातें हैं वो आपकी सेवा में निवेदन कर देना अपना काम है। अब कब समझ में आएगा? जब समझ में आवे तभी सही, अभी तो अभी सही, और अभी नहीं तो कभी सही। और भी अवसर ऐसे आते हैं, तो मान लो कि आप जाते हैं गृहस्थी के रीति रस्मों में भाग लेने के लिए और बताते नहीं हैं, बताइए कोई बात नहीं, दूसरा 10 काम है उसमें एक ये भी शामिल कर लिया और हो आए कर आए, किसी ने जाना नहीं, किसी ने सुना नहीं, किसी को आपने बताया नहीं, तो भी अगर आपके भीतर ये राग रह गया है और किसी न किसी तरह से आप उसमें शामिल होना पसंद ही कर रहे हैं, तो मानव सेवा संघ शासन नहीं करता कि आप क्यों गए, आप क्यों शामिल हुए, उससे कोई फायदा नहीं होने का है। आपके भीतर से ही ये चीज उपजनी चाहिए कि भाई अब मुझे साधक होकर रहना है, अब मुझे जीवन मुक्ति और भगवत भक्ति का पुरुषार्थ करना है, तो अब जिस स्वीकृति को अस्वीकार कर चुके, एक दिन था, एक क्षण ऐसा आया कि जब आपने अपने को गृहस्थ स्वीकार किया, और एक क्षण जीवन में ऐसा आया कि जब आपने अपने को गृहस्थी की स्वीकृति को अस्वीकार किया, तो अस्वीकृति के बाद भी अगर उसी राग की पूर्ति करना है आपको, तो दुनिया में कोई आपको राग रहित बना नहीं सकता। तो मानव सेवा संघ की एक यह विशेषता है कि हम जबरदस्ती नहीं करते, और नहीं तो जबरदस्ती करने से क्या होता है, शासन करने से क्या होता है कि बाहर बाहर से आदमी का व्यवहार तो नियंत्रित हो जाता है लेकिन भीतर से उसकी राग निवृत्ति नहीं होती। यहाँ तक कि मैं तो महाविद्यालय से आती थी स्वामी जी महाराज के पास, छात्रावास में रहती थी, सैकड़ों लड़कियों को लेकर के घंटी लगा के जगाना, घंटी लगा के सुलाना, घंटी पर भोजन, घंटी पर अध्ययन, इस तरह का एक क्रम था। तो महाराज जी के पास आकर के जब मैं देखती कि सत्संग के समय कोई कहीं पर सो रहा है, तो हम धीरे धीरे महाराज जी से पूछते कि महाराज जी एक आदमी उधर सो रहा है, जगा दूं? कहते नहीं 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 नहीं, जगाओ मत जगाओ मत, सत्संग की अपेक्षा नींद उसको ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम होती है, तो उसको सोने दो, जगाने से कोई फायदा नहीं होगा, जगाने नहीं देते। जिसको नींद की अपेक्षा सत्संग अधिक महत्वपूर्ण मालूम हो तो उसको तो उस समय में नींद आएगी नहीं, अब घंटी भी बज रही है, लोग बाग सब आ भी रहे हैं, सभा हो रही है, बैठक हो रही है, और आदमी कोई सो रहा है आराम से, तो जगाने नहीं देते थे कि नहीं नहीं नहीं। कितने विधि विधान से साधकों के जीवन को सही क्रम पर चलाने का इंतजाम उन्होंने किया, लेकिन कहीं पर किसी जगह पर जोर नहीं डाला। तो एक यह विशेषता है और महाराज जी ने इसको जाना, इसलिए उन्होंने ये नियम हम लोगों के सामने रखा। और इसमें दार्शनिक सत्य भी है। दार्शनिक सत्य क्या है कि हम लोगों का जो ये अहम रूपी अणु है, जिसने सत्य को भी स्वीकार किया है और फिर असत्य से संबंध भी रखा है, तो चाहते तो ये है कि दुख रहित देहातीत अविनाशी जीवन के आनंदमय अस्तित्व का भी अनुभव हो जाए और परम प्रेमास्पद प्रभु के अलौकिक प्रेम रस को पा करके जन्म जन्मांतर के सदा सदा के लिए सब प्रकार की तृष्णा शांत हो जाए, अभाव मिट जाए, नीरसता मिट जाए और हम प्रेम स्वरूप होकर प्रेमास्पद से अभिन्न हो जाए। मांग तो ये है और इस मांग को रख करके हम लोग साधक भी बनते हैं, सत्संग भी आरंभ करते हैं, साधन में भी लगते हैं और साथ साथ नाशवान शरीरों से भी जुटे रहते हैं, शरीर के संबंधियों से भी जुटे रहते हैं। तो ऐसी दशा में जो ये प्रारंभ की बात है, जैसी जैसी वर्तमान दशा अपने लोगों की है, उसमें से आगे निकलने के लिए यह प्रणाली बहुत अच्छी है कि अकेले में बैठकर आत्मनिरीक्षण करो। पहला नियम है निज विवेक के प्रकाश में आत्मनिरीक्षण करना, अपनी भूलों को देखना, और दूसरा नियम है की हुई भूल को न दोहराने का व्रत लेना। तो बिल्कुल आरंभ की बात है। तो कहा गया कि इस संसार में व्यक्तिगत अपना किसी का कुछ नहीं है, इसलिए किसी वस्तु को व्यक्तिगत मत मानो, तो ममता के नाश की सामर्थ्य आ जाएगी। और जो कुछ अपने को मिला हुआ है वही मुझे अविनाशी जीवन देने में असमर्थ है, वही मुझे रसरूप जीवन देने में असमर्थ है। तो जो मिला हुआ है वही मेरे काम का नहीं है, तो जो नहीं मिला है उसकी कल्पना क्यों करना, उसकी चाहना क्यों करना, उसकी कामना जीवन में क्यों रखना। ये हो गई विचार की बात। इस प्रकार से अध्ययन करके, जीवन को देखकर विचार करके, और फिर कामना रहित होने का प्रयास करो। तो अहम के परिवर्तन की बात महाराज जी ने पहले कही, और उन्होंने इसका जो स्वरूप बताया उसमें इतनी गुंजाइश है अपने को बदल डालने की कि जो व्यक्ति स्वयं अपनी धारणाओं को बदल देता है, जीवन के मूल्यांकन को बदल देता है, लक्ष्य को बदल देता है, ठीक कर लेता है क्या कर रहे थे अब क्या करना है, क्या मान रहे थे अब क्या मानना है, किसको हमने सत्य माना था वास्तविक बात क्या है, तो ये सब अपने द्वारा निश्चय कर लेने पर मन चित्त बुद्धि इंद्रियां सब में परिवर्तन आता ही है। मैं के स्वरूप के संबंध में संत समागम वाली ग्रंथ में कहीं पर ये बात लिखी हुई है, पृष्ठ संख्या इत्यादि मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा। मिल बाजा का उदाहरण दिया है महाराज जी ने मनुष्य के अहम रूपी अणु को। क्या है भाई, कोई नहीं पहचानता है। बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर लोग बैठे हैं, उसमें एक आदमी एक टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी का टुकड़ा लेके बैठा है। सब लोग अपना अपना यंत्र बजा रहे हैं, तो वो भी अपनी लकड़ी पर हाथ फेर रहा है। पूछा गया कि भाई तुम्हारी बाज इसका यंत्र का नाम क्या है, तो उसने कहा इसका नाम है मिल बाजा। तो इसमें स्वर कौन सा निकलता है, तो अपने अपना कुछ नहीं, सब सबके साथ मिल जाता है, और जिसका जैसा स्वर होगा तो इसका स्वर हो जाएगा। उदाहरण देने के लिए उन्होंने ये चीज ली और कहा कि हमारे अहम का भी यही हाल है। अगर उसे देह के साथ मिला दो तो देह के जितने लक्षण हैं सब उस पर घटित हो जाते हैं। अभी हम बलिष्ठ हैं, अब दुर्बल हो गए, अभी जी रहे हैं, अभी मर जाएंगे, अभी बहुत दुखी हैं, अभी बहुत सुखी हैं। तो शरीर के साथ उसको मिला दो तो शरीर के सब लक्षण उस पर आरोपित हो जाते हैं, घटित हो जाते हैं, और आदमी उसी के अनुसार सुख दुख का भोग करने लग जाता है, और उसी के अनुसार सुख दुख अनुभव करने लग जाता है। और यदि ये इस बात को विवेक के प्रकाश में देख करके और अपनी ओर से असत के संग का त्याग करना, यदि ऐसा हमने कर लिया कि जीवन के सत्य को स्वीकार करना, उस स्वीकृति के आधार पर जीना आरंभ किया, तो सत्य की स्वीकृति के आधार पर उसी अहम में जो ये करता है कि हम बड़े सुखी हैं बड़े दुखी हैं, उसमें बड़ा परिवर्तन आ जाता है। आपने संतों भक्तों महापुरुषों के जीवन में सुना होगा कि वे रोग बीमारी आपत्ति विपत्ति आक्रमण सबके सामने क्या कहते हैं, मेरा न कभी जन्म हुआ न मेरी कभी मृत्यु होगी। अब क्या हो गया, तो असत के संग के त्याग से, सत्य की स्वीकृति से, उसी अहम रूपी अणु में विद्यमान अलौकिक और अविनाशी तत्वों की अभिव्यक्ति हो जाती है तो एकदम परिवर्तन हो जाता है। तो भय नहीं है, दुख नहीं है, शांति नहीं है, मृत्यु नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने मनुष्य के विकास के लिए सत्संग पर बहुत जोर डाला कि पहले सत्संग करो। सत्संग के आधार पर जब असत की स्वीकृति निकल जाएगी, जब सत की स्वीकृति तुम्हारा जीवन बन जाएगी, तब उसके बाद फिर कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इस एक विशेष बात को ध्यान में रखना। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि भाई दुनिया का कोई भी काम हम लोग करते हैं तो उसका सफल होना और विफल होना विशेष अर्थ नहीं रखता है, सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन मनुष्य के जीवन के साथ जीवनदाता प्रभु का बनाया हुआ मंगलमय विधान इतना बढ़िया है कि जिस समय से आप सत्य के जिज्ञासु बनते हैं अथवा भगवान के विश्वासी बनते हैं, तो आस्था श्रद्धा का पंथ पकड़ो अथवा विचार का पंथ पकड़ो, किसी भी प्रकार से आपने सन्मार्ग पर चलना आरंभ किया तो कभी मत सोचना कि आखिर समय तक आप असफल रहेंगे। उस दिशा में असफलता नहीं होती है। जैसे जैसे विचार बदलता जाता है दोष मिटते जाते हैं, जैसे जैसे आपकी जीवनी शक्ति आपके लक्ष्य के साथ जुट जाती है, सत्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सुन लिया, समझ लिया और साधन के क्रम में थोड़ा थोड़ा अनुभव भी कर लिया, सबसे बढ़िया बात क्या है हम लोगों के लिए कि इस दिशा में पुरुषार्थ करने वाले साधक के लिए बहुत ही आशाजनक बात यह है कि जहां साधक अपनी ओर से ऐसा अनुभव करता है कि क्या बताएं, इन विकारों का नाश करना तो मेरे लिए बहुत कठिन हो गया, मैं काम क्रोध लोभ मोह को रखना नहीं चाहता हूँ, मेरे प्रयास से ये मुझमें से निकलते नहीं है, तो जहाँ आप अपनी असमर्थता से अधीर होते हैं वहीं पर करुणामय की करुणा का दरवाजा खुल जाता है। स्वामी जी महाराज का अपना अनुभव था और उन्होंने मानव जीवन के मंगलमय विधान में इस बात की बहुत अच्छी चर्चा की। समय समय पर हम साधकों को बड़ा ही आश्वासन दिया ये कहकर के कि डरने की घबराने की बात नहीं है, अपनी ओर से तुम बुराई करो मत, और की हुई बुराई के परिणाम का नाश करने में अगर असमर्थ हो जाओगे तो डरने की कोई बात नहीं है, एक सामर्थ्यवान तुम्हारा रक्षक है, सहायक है, और तुम उसे बुलाओ चाहे मत बुलाओ, लेकिन जहां तुम हारते हुए अनुभव करोगे वहां वो आकर के तुम्हें संभाल लेगा और तुम्हें पार लगा देगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, हार होगी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज के युग के ईश्वर विश्वासी महात्मा गांधी ने भी लिखा है कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए आखिरी दम तक कोई गलत रास्ते नहीं गया। सप्त महाव्रत कथा लिखा था उन्होंने, नमक कर आंदोलन में जब जेल में थे तब 1929-31 के बीच में, तो उसमें यह वाक्य लिखा है, उसी समय का मेरा पढ़ा हुआ याद रहता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए अंतिम समय तक कोई गलत रास्ते नहीं गया। क्यों? क्योंकि जिस सत्य की आराधना में आप लगे हैं वो आप ही में विद्यमान है, सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, आपको देख रहा है। बस अंतर कितना है कि आपको पसंद क्या है। अगर निर्विकार होना पसंद है, किसी भी प्रकार से विकार युक्त दशा को आप सहन नहीं कर सकते हैं, तो विकारों को मिटाने की सामर्थ्य आप में है कि नहीं है, ये इमेटेरियल बात है। कुछ इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सारी जिम्मेदारी अपने पर नहीं है, कोई है हमको संभालने वाला, तो आप जितना कर सकते हैं पूरी शक्ति लगा डालिए, और जहां आपकी शक्ति खत्म हो जाएगी तो असमर्थता की वेदना में आवश्यकता की पूर्ति स्वतः होती है। असमर्थता की वेदना में करुणामय की करुणा का दरवाजा खुलता है, अर्थात जहां जाकर के हम रुक जाते हैं वहां आकर के वे मिल लेते हैं। अनेक प्रकार से इसकी अभिव्यक्ति की गई है और अनुभवी जनों ने इस सत्य को जाना है। इस आधार पर वर्तमान अपने सरीखे अपने सभी आत्मीय भाई बहनों से मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि जीवन के सत्य को सामने रखकर खूब आशा और विश्वास के साथ आप अपने पुरुषार्थ में लगे रहिए। जितनी शक्ति आपके पास बची खुची है, ज्यादा तो खर्ची हो गई है इधर उधर में, उसके लिए तो कम ही बची है, लेकिन कुछ परवाह नहीं, जितनी बची हुई शक्ति है उसको इस दिशा में लगाइए, और जहां आपके पास घट जाएगी वहां अनंत सामर्थ्यवान हमारे साथ हैं, वे शक्ति भी देंगे, सामर्थ्य भी देंगे, प्रकाश भी देंगे, चलने की राह भी बताएंगे, और समय समय पर अब ऐसा मैंने अनुभव किया है कि हाथ पकड़ के चला भी देते हैं, पार भी करा देते हैं, तो पथ भी देते हैं, पाठे भी देते हैं, मंजिल पर पहुंचा भी देते हैं, ऐसा होता है। इसलिए खूब निश्चिंतता से, निर्भयता से, आशा और विश्वास के साथ हम लोगों को करना होना चाहिए। अब शांत हो जाए।